नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड ने नई दिल्ली के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मुलाकात की। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की नौवीं परिषद बैठक की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आयोजित। अरुणाचल प्रदेश की रूबी लोम्बो ने इतिहास रचते हुए राज्य की पहली माउंटेन टेरेन बाइक MTB कोच बनने का गौरव प्राप्त किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह में भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे मैचों के लिए भारत की टीमों की घोषणा कर दी गई है। और IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के इस समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, विशेष रूप से राज्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें सीमा सुरक्षा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और अग्रिम क्षेत्रों में गुडविल प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन शामिल है। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने हालिया दौरे के अनुभव साझा कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति और तैयारी का आकलन किया। उन्होंने पूर्वी सीमा के कुछ हिस्सों पर उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता जताया और सीमा प्रबंधन एवं अवसंरचना को मजबूत करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने सेना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के साथ मजबूत समन्वय स्थापित किए हैं। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी सोना ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद की 9वीं परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यभर में उच्च शिक्षा सुधारों और चल रहे आधारभूत संरचना विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बैठक की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि बैठक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA 1.0, RUSA 2.0 तथा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हुई प्रगति का आकलन किया गया, जिसमें अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी है या तो पूर्णता के करीब है। उन्होंने कहा कि बैठक में संस्थागत विकास योजनाओं को अद्यतन करने, सभी संस्थानों के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्थानांतरण रोडमैप तैयार करने जैसी प्रमुख प्राथमिकताओं को दोहराया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सैनी ने बताया है कि SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध, सटीक और समावेशी बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक छूटा न रह जाए और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो पाए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित कर उन्हें SIR की जानकारी देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों के अपने अपने जिला दलों के साथ SIR पर समन्वय बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए। अरुणाचल प्रदेश की रूबी लोम्बो ने इतिहास रचते हुए राज्य की पहली माउंटेन टेरेन बाइक MTB कोच बनने का गौरव प्राप्त किया है। वह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI द्वारा एशियन माउंटेन बाइक चैंपियनशिप 2026 ताशकंद उज्बेकिस्तान के लिए टीम इंडिया के चयनित की गई है। वे राज्य की एकमात्र महिला कोच है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें बधाई देते हुए आगामी एशियन MTB चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया की सफलता की कामना की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो एक सप्ताह में भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें अब 98.64 रूपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमतें 91.98 रूपये हैं। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 प्रति लीटर बिक रही है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपये और डीजल की 96.700 रूपये दर्ज की गई है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की 96.11 रूपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलमग्न मुख्य के रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी तेजी के बाद की गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे मैचों के लिए भारत की टीमों की घोषणा कर दी गई है। विराट कोहली, रोहित शर्मा वाली वनडे टीम में प्रिंस यादव को पहली बार जगह मिली है। KL राहुल को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह को दोनों ही सीरीज से आराम दिया गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार में संविदा सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर आ गया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।